الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدار وندار بید الامر قلب اللیل والنہار متفق علیہ. اس حدیث کو بخاری و مسلم دونوں شیخین نے اسے روایت کیا ہے. یہ حدیث قدسی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یؤذینی ابن آدم، کہ یہ جو ابن آدم ہے انسان ہے یعنی کہ یہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے اور اس سے مجھے تکلیف دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں ہی رات کو اور دن کو بدلتا رہتا ہوں. اب اس حدیث میں ویسے تو بہت زیادہ ڈیپتھ اور ڈیٹیلز اور محدثین کرام نے بہت لمبی لمبی اس کی تفاسیر لکھی ہیں، لیکن مین چیز جو سمجھنے کی ہے اگر ہم غور کریں آج کے اس ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ اور اس ترقی کے دور میں جہاں مین کائنڈ ہیز پروگریسڈ سو فار اہیڈ اور ایٹ لیسٹ وی تھنک سو دیٹ وی ہیو، تو اس اتنا آگے نکلنے کے باوجود اگر ہم غور کریں تو دنیا میں ہر پروڈکٹ، ہر کوئی بھی مینوفیکچر ہوتی ہے جب چیز، تو اس کی فیکٹری یا اس کا جو بھی آؤٹ لیٹ ہوتا ہے وہ اس کی طرف سے ایک ساتھ میں کوڈ یا گائیڈ لائن یا اس کی مینوئل انسٹرکشنز مینوئل ساتھ میں دیتا ہے. کیا مطلب کہ مثال کے طور پہ ایک آئی فون ہے، آئی فون کے ساتھ اس کی ایک بک لیٹ آتی ہے جو اس کی انسٹرکشنز مینول ہوتی ہے کہ اس کے ڈوز اور ڈونٹس ہوتے ہیں، کیا کرنے اس کے ساتھ یہ فون زیادہ لانگ لاسٹنگ اور ایفیشنٹ اور اچھی پرفارمنس دے گا، اور کیا چیز کرنے سے اس کی بیٹری پہ افیکٹ ہو سکتا ہے، اس کی پروسیسر پہ، اس کے اندر کی مشینری خراب ہو سکتی ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اس کے ڈوز اور ڈونٹس باقاعدہ اس ایپل کمپنی کی طرف سے اس کے ساتھ ملیں گے. اور اسی طرح دنیا کے ہر پروڈکٹ کو ہم دیکھ لیں، کوئی گاڑی سے لے کر کوئی چھوٹے سے چھوٹے کوئی بچوں کا ٹوائے ہوتا ہے، اس میں بھی دیکھیں گے تو ساتھ میں ایک انسٹرکشنز مینول یا ایک گائیڈ یا کس کو کوڈ بک کہہ سکتے ہیں وہ ساتھ میں آتی ہے. اس سے بات سمجھ میں کیا آئی کہ دنیا کو جو ایک مائنر چھوٹے سے چھوٹا پروڈکٹ بھی بنانے والا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ جس نے اسے بنایا ہے کہ واٹس گڈ فار اٹ اینڈ واٹس بیڈ فار اٹ اینڈ ہاؤ ٹو اچیو دا میکسیمم فائدہ اس چیز سے. تو وہ اسی طرح سے انسان کے اوپر اگر ہم اپنی زندگی پہ غور کریں تو ہمیں بنانے والے یعنی اللہ رب العزت نے ایک انسٹرکشن، ایک گائیڈ لائن اور وہ کوڈ، وہ مینول ساتھ میں دیا قرآن کی شکل میں کہ اس کے اندر تمہارے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، انہیں فالو کرو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جو مینوفیکچرر ہوتا ہے اس پروڈکٹ کا، وہ بیسٹ جانتا ہوتا ہے کہ اس میرے پروڈکٹ میں کیا فلا ہے. ایون دو دیکھنے والے کو سامنے خود ان اٹ سیلف اس پروڈکٹ کو نہیں پتا کہ میرے اندر یہ فلا بھی ہے، لیکن جو اس کا مینوفیکچرر ہوتا ہے اس پروڈکٹ کا، اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ فلاز ہیں اور اس صورت میں یہ کرنے سے یہ چیز فوراً خراب ہو سکتی ہے، اور وہ اسی لیے گائیڈ لائن ساتھ میں دے دیتا ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے اس پروڈکٹ کے ساتھ. اسی طرح اللہ نے بھی ہمیں ایون دو قرآن میں خود بتا دیا ان الانسان ظلوما جہولا، کہ یہ ظالم ہے اور یہ جاہل بھی ہے. ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ، ہی جسٹ ازیومز، ہی تھنکس دیٹ ہی نوز ایوری تھنگ، بٹ ان ریئلٹی ہی ڈزنٹ. اور یہی نہیں بلکہ ان الانسان خلق ہلوا اذا مسہ الشر جزوع و اذا مسہ الخیر منوع، کہ یہ جو انسان ہے یہ جلد باز ہے، جب اس کی طرف کوئی برائی آئے گی شر جزوع تو یہ فوراً ناشکری شروع کر دے گا اور اسے اس کے اوپر کمپلیننگ سٹارٹ کر دے گا. بٹ وائذا مس الخیر، جب اس کے پاس کوئی اچھائی کو نعمت پہنچتی ہے فوراً منوع، تو وہ اس کا انکار کر دیتا ہے، اس کو ڈس ریگارڈ کر دیتا ہے یا اس پہ تھینک فل نہیں ہوتا. اور اسی طرح کان الانسان اکثر شعین جدلا، یہ لڑاکو یہ جھگڑالو ہے، ہی از فائٹر، یو نو ہی از ریڈی ٹو فائٹ آن ایچ اینڈ ایوری تھنگ، छोटी से छोटी कोई चीज़ होगी, कोई भी बड़ा होगा, आर्ग्यूमेंट, बहस, बबायसा, इस चीज़ में ज़्यादा फोकस्ड होगा और दलील से हर चीज़ को, इसको प्रूफ करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी होगी। इवन दो बाज़ औक़ात, बल्कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम उससे वो अपना ही नुकसान कर रहा होगा, सिर्फ अपना टाइम का भी ज़ाया और अपनी एफिशिएंसी, अपनी मेहनत, अपनी जो एनर्जी है उसे वेस्ट कर रहा होगा। लेकिन बहरहाल ही इज़ जदला, जैसे कुरान में अल्लाह ने फरमाया। तो ये सारी क्वालिटीज़ इंसान के अंदर हैं और बज़ाहिर वो समझता है कि मुझे सब पता है, लेकिन इस हदीस में इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया अब कि ये मुझे तकलीफ़ देता है। हालांकि अगरचे ये जो यूज़ीनी है इब्न आदम यसुब्बु दहरा, ये मुझे तकलीफ़ देता है, ये ज़माने को बुरा भला कह रहा होता है। ज़माने को हालांकि बुरा भला कहने से अल्लाह को तकलीफ़ तो नहीं हो सकती, अल्लाह तो इससे बालातर है, पाक है। ईज़ा लफ्ज़ असल में कहते हैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है किसी भी अमरे मकरू को गैर की तरफ पहुंचाना, कौलन हो या फेलन हो। इस बात का क्या मतलब कि अमरे मकरू यानी कि कोई प्रोहिबिटेड एक्शन या वर्ड हो जो अच्छा ना समझा जाता है, वो उसे अपनी बात के ज़रिए, अपने एक्शन के ज़रिए वो काम किसी दूसरे के को करवा की तरफ करना, इसे ईज़ा कहा जाता है। इससे ये नेसेसरीली लाजिम नहीं आता कि उस बंदे पे इसका इफ़ेक्ट भी होता है या नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा है वो दूसरे को गाली देता है, तो टेक्निकली इसे कहा जाएगा इसने इसे तकलीफ़ दी। इट इज़ वेरी पॉसिबल कि जिस बंदे को गाली दी हो उसको कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो, ही डजन इवन केयर। तो इस एक्शन या इस वर्ड्स के थ्रू कोई भी ऐसा बुरा काम किसी दूसरे ज़ात के लिए करने को ईज़ा कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे अल्लाह ने कहा ईज़ा मुझे देता है, ये तकलीफ़ देता है। क्या मतलब कि ये बुरा काम करता है, समझता है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन अब अगरचे अल्लाह तो इससे पाक है, बालातर है, अल्लाह तो वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा सुम्मा वला वराउल वरा है, तो उसे कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। बट ये बहरहाल ये इंसान का काम है, इसीलिए अल्लाह ने इस हदीस कुदसी में ये फरमाया। तो ये ऐसा काम क्योंकि करता है जिससे अल्लाह नाराज़ होता है, इसलिए अल्लाह ने कहा यूज़ीन इब्न आदम कि ये मुझे तकलीफ़ देता है। और कैसे तकलीफ़ देता है, ये ज़माने को बुरा बोलता है। कोई इसको तकलीफ़ आ जाती है तो ये भाई ये टाइम ऐसा आ गया है, ये वक्त ही बुरा है, आजकल तो हालात ऐसे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, 100 किस्म के बहाने निकालते हैं। अपनी गलती या अपनी उस फॉल्ट की तरफ कभी भी उसकी नज़र नहीं जाती। जबकि वेरी कैटेगोरिकली एक और हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था मन कानतिल आखिरा तो हम जाल्ला फ़ी कल्बी गिनन, कि ये जो आदमी आखिरत को अपना गम बनाता है मैं उसके दिल को गना से यानी कि सेटिस्फेक्शन से भर देता हूँ और उसकी दुनिया उसके कदमों में ला के रख देता हूँ, उसके सब मसाइल, उसके सब प्रॉब्लम्स हल कर देता हूँ। वमन कानतिल दुनिया हम, जो दुनिया को अपना गम बना के रखेगा, दुनिया के पीछे पड़ा रहेगा और इसमें टेंशन में लगा रहेगा, वो उसके अल्लाह दिल को भी फ़कर से भर देगा, यानी हर वक्त उसे फ़कर लगा रहेगा, उसे परेशानी लगे रहेगी, उसे तकलीफ़ लगी रहेगी। और अल्लाह कहता है उसकी दुनिया, उसको उसको मैं दुनिया उसके पास से छीन लूँगा, वो भागता रहेगा इसके पीछे और उसको नहीं मिलेगी। तो ये कैटेगोरिकली अल्लाह ने तो हमें इंस्ट्रक्शंस जो वो हमारी कोड मैनुअल थी वो जगह जगह दी हुई हैं, लेकिन इंसान उन्हें क्योंकि फॉलो नहीं करता, इसी वजह से ये इस प्रॉब्लम का शिकार होता है। इसमें एक दूसरी बल्कि एक और ही हदीस कुदसी है। ये सबसे पहले तो समझना ज़रूरी, बल्कि मेरा ख्याल है एक बात को है हमारे लिए इम्पोर्टेंट के हदीस कुदसी कहते उस चीज़ उसे हैं जो हदीस आज हम करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो अल्लाह की तरफ से वही होती है, ये वही का आना, एक तो ये सूरत है कि वर्ड्स भी अल्लाह खुद ही अपने दे देता है और उसका मीनिंग जो भी है वो भी अल्लाह ही खुद ही बता देता है, और उसकी निस्बत डायरेक्ट अल्लाह की तरफ उस उन वर्ड्स की होती है। जो ये वही का फॉर्म जो होता है ये कुरान पाक होता है। दूसरा फॉर्म ये होता है कि जो वर्ड्स होते हैं वो तो अल्लाह ही देता है, लेकिन उसमें जो मीनिंग होता है, यानी उन उन वर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो एग्जैक्टली अल्लाह अपने तरफ से देता है और निस्बत भी उसी की तरफ से होती है, लेकिन जो उसके वर्ड्स होते हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अदा कर रहे होते हैं, और ये कुरान पाक नहीं होता, ये इसे हदीस कुदसी कहा जाता है। यानी इसमें वर्ड्स अल्लाह के होते हैं और अल्लाह की तरफ ही इन वर्ड्स की निस्बत होती है कि ये वर्ड्स अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह यूँ फरमा रहे हैं। जब ये ऐसी हदीस हमें मिलती है इसे हदीस कुदसी कहा जाता है। और इस हदीस के अंदर अगर हम दूसरी गौर करें तो ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से एक रिवायत है कि कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल अल्लाह ताला, ये अगेन हदीस कुदसी क्योंकि है तो इसमें अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहा है, क्या फरमा रहा है, कज़्ज़बन इब्न आदम व लम यकुन लहू ज़ालिक, कि इब्न आदम, ये जो आदम का बंदा है, बेटा है, मुझे झुटलाता है, यानी कि कज़्ज़बनी, कज़्ज़ब वैसे तो झूठ को बोलते हैं, और ये मुझे झुटलाता है यानी मुझे डिसोन करने की कोशिश करता है। हाओ, ये हालांकि इवन दो वलम यकुन लहू ज़ालिक, ये इसके लिए अच्छा नहीं है, ये इसकी यानी शायान शान नहीं है जो ये काम करता है, वशतमनी, और इसलिए ये मुझे झुटलाता किस लिए है, ये कहता है कि वलम यकुन लहू ज़ालिक फ़म्मा तकज़ीबु इयाया फ़क़ौल, ये मुझे झुटलाता ऐसे है कि लम युईदनी कमा बदानी, ये कहता है कि मुझे अल्लाह उस तरह से पहले पैदा नहीं कर सकेगा, मेरा इरादा नहीं कर सकेगा जैसे मुझे पहले पैदा किया था, यानी कि गोया आखरत पर और दोबारा उठाए जाने पर डाउट करता है, उस पर शक करता है। और अल्लाह फरमाता है वलैसा अव्वलुल ख़ल्क़ी बिहा बना अलैया मिन इयादती, यानी क्या इट इज़ नॉट ईजियर फॉर मी टू री क्रिएट वॉट आई ऑलरेडी क्रिएटेड बिफोर, और वम्मा शतम, और ये मुझे गाली कैसे देता है। शतम वैसे तो गाली को कहा जाता है, मगर यहाँ पे ये अल्लाह के शान शान ही नहीं तो कोई गाली गलोच यानी कि कोई बुरा वर्ड इस्तेमाल करता है मेरे लिए, अल्लाह ने इसे इतना सीरियस लिया कि कहा कि शतमु, मुझे गाली देता है ये, और इसका क्या है, ये गाली कैसे देता है। या फ़क़ौलुहु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा व अनल अहद अस्समद अल्लज़ी लम अलिद व लम उलद व लम यकुन ली कुफुवन अहद, ये कहता है कि अल्लाह का बेटा है जबकि मैं तो अहद, मैं सिर्फ एक हूँ और अस्समद हूँ, और मेरे लिए ये मेरी शायान शान ही नहीं है कि मैं किसी का बेटा हूँ या मेरा कोई बेटा हो। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो क्योंकि नसारा कहते थे तो ख़ास तौर से उन्हें एड्रेस करके कहा कि ये तो मुझे गाली देने के बराबर है, बल्कि ये एक दूसरी एक बुखारी शरीफ की जो रिवायत है, एक उसमें हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अनुमा से, उसमें जो कहता है अल्लाह ने कहा अम्मा शतमू, ये जो गाली है इनकी, या फ़क़ौलू, ये है, ये मुझे कहते हैं ली वलदन व सुबहानियन अत्तख़िज़ साहिबतन औ वलदन, ये मेरी शान के ख़िलाफ़ है, मैं तो इससे बुलंद हूँ कि मेरा कोई बीवी हो, कोई मेरी ज़ौज हो या मेरा बेटा हो, तो ये अल्लाह की शायान शान ही नहीं कि इसके बारे में ऐसी बात की जाए, लेकिन ये ऐसे कहता है कि है और अल्लाह को ये गोया गाली के बराबर लगता है, तो इसलिए अल्लाह ने इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। और ये जो झुटलाता है अल्लाह को और कहता है लम युईदनी कमा बदानी, ये अज्यूम करता है कि मेरे लिए अल्लाह को दोबारा क्रिएट करना, पैदा करना या बनाना पॉसिबल नहीं है, या इस तरह की थॉट रखता है अपने दिमाग में। हालांकि अगेन अगर हम किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ को इस दुनिया में देखें तो उसकी जो इनिशियल क्रिएशन होती है वो असल मुश्किल चीज़ होती है। एक दफ़ा एक चीज़ बन गई फिर उसमें तो वक्तन ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट्स आती रहेंगी, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती रहेगी, लेकिन उसे दोबारा अगर कोई भी बनाना चाहे उसका एक सांचा होता है, जैसे स्टेंसिल कह लें आम तौर पे भी, या कोई उसका एक फिगर का एक कॉन्सेप्ट जब आ गया, इस दुनिया में एग्जिस्ट हो गया, अब उसे रिक्रिएट करना तो फर्स्ट पहली दफ़ा क्रिएट करने से और आसान होता है, और आज के तो दौर में इस चीज़ को समझना बिल्कुल ही आसान है और बहुत ही ईजी है, बिकॉज इवन अगर हम एक लिविंग थिंग की क्रिएशन की बात करें, चलें प्रोडक्ट्स नॉन लिविंग थिंग्स को छोड़ दें, तो आज की जो साइंस और मेडिकल साइंस ख़ास तौर से वो तो इतनी तरक्की कर चुकी है कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं शीप की फॉर्म में, कैमल की फॉर्म में जो एनिमल्स हैं उन्हें दोबारा जेनेटिक तरीके से उनके डीएनए सैंपल्स लेके और उनके एग्जैक्टली रेप्लिकास ऑलरेडी लिविंग बीइंग्स क्रिएशन में आ चुके हैं, बाकायदा ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, ऐसे जो रिसर्च और इस जो जेनेटिक और क्रोमोसोम्स और डीएनए के ऊपर चल रही है, उसने ऑलरेडी इतनी तरक्की कर ली है कि वो तो किसी लिविंग बीइंग को बनाने की पोजीशन में ऑलरेडी नज़र आती है और देखने में भी यही आता है। तो दज्जाल का टाइम भी ऐसा ही होगा बहरहाल, लेकिन अल्लाह के लिए ये बात करना कि वो नहीं बना सका, ये तो बिल्कुल ही एक हिमाकाना कह लें या स्टूपिडिटी कह लें इंसान की, क्योंकि क्या है, जाहिल है, ये इसे कुछ पता नहीं है, अकल नहीं है इसके अंदर, तो अपनी स्मार्टनेस में, अपनी ओवर एफिशिएंसी में समझता है कि मेरे शायद अल्लाह के लिए कोई मुश्किल होगा या मुझे दोबारा नहीं बना सकेगा। हालांकि अल्लाह के लिए तो एक सिर्फ ऐजा अरादा यकून लहू कुन फयकून, जब अल्लाह के ने इरादा किया वो सिर्फ कुन कहता है और वो खुद ब खुद हो जाती है चीज़, तो उसके लिए कोई चीज़ ये मुश्किल नहीं। और शतम इस हदीस में आया था, ये जो अल्लाह की तरफ निस्बत करता है, हालांकि शतम कहते हैं किसी हकीर और नाकिस चीज़ को किसी की तरफ मंसूब करना, तो ये क्योंकि अल्लाह की तरफ गलत चीज़ को मंसूब करता है, तो इसलिए अल्लाह ने ये अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल किए। और अब ये क्योंकि इंसान की नाशुक्री ही है जिसकी वजह से वो आज अपनी जो उसके करने के डूज़ और डोंट्स हैं उसकी उसको फॉलो ना करने की वजह से और उन्हीं गाइडलाइन और कोड्स को ना करने की वजह से आज सिचुएशन ऐसी आ गई इंसान के अपने ऊपर कि अगर हम कुरान पाक में गौर करें तो इसमें तो हर चीज़ का हमें आंसर मिलता ही है। अल्लाह ने बाकायदा ये आयत में हमें एक एग्ज़ाम्पल दिया, वज़रबल्लाहु मसलन करियतन, एक अल्लाह ने मिसाल पेश की, सेट फोर्थ अ पैबल फॉर अस, पैरेबल फॉर अस, ज़रबल्लाहु मसलन करियत, एक अल्लाह ने मिसाल कायम की हमारे लिए, एक करिया की शक्ल में एक बस्ती है, कोई लोग हैं। अब इस आयत को अगर हम अपने ऊपर आज इम्प्लीमेंट करने करके देखें, चाहे हम दुनिया के किसी भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में एग्जिस्ट करते हों, रेजिडेंट हों, किसी भी एथिकल या रिलीजियस आइडेंटिटी से अपने आप को एसोसिएट करते हों, किसी भी रेशल या जेनेटिक तरीके से अपनी लीनेज को डिस्क्राइब करते हों, दुनिया के किसी कोने में भी हम रहते हों, उस वो अपने आप को सिर्फ़ इस आयत के ऊपर रखें और सोचें कि ज़रबल्लाहु मसलन करियतन, ये हमारी बात हो रही है शायद, कानत आमिनतम मुतमइन्ना, ये लोग बड़े अमन के साथ और मुतमइन तरीके से रह रहे थे, यानी इनके पास अल्लाह ने अमन अता फरमाया इनको और मुतमइन थे ये, देवर सेटिस्फाइड विद देयर लाइव्स, कानत यातीहा रिस्कुआ रगदम मिन कुल्ली मकानिन, इनके पास चारों फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हर तरफ से उनके पास रिस्क मौजूद था, हर किस्म की नेमतें अल्लाह इन्हें दे रहा था। तो सिर्फ फिर क्या हुआ, फिर क्या किया उन लोगों ने, फकफरत भी अनुमिल्लाही, इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, यानी शुक्राने कुफराने नेमत किया और अल्लाह की जो नेमतें अल्लाह इनके पास थी, जो भी नेमतें थी, इंसान क्योंकि नाशुक्र है और वो ये हमेशा अपने से ऊपर देखेगा कि मेरे पास ये नहीं था, लेकिन अपने अपने एक फॉर्म में जो जो कुछ नेमतें उसके पास थीं उसने नाशुक्री की, फकफरत भी अनुमिल्ला ही, ये अल्लाह की नेमतों का जब नाशुक्री करता है तो फिर क्या अल्लाह करता है, फ़ाज़ाकहुल्लाहु लिबास अल्जुअ वल खौफ बिमा कानू यस्नाउन, अल्लाह ने दो काम किए इन लोगों के साथ, जो नाशुक्रे लोग थे उनके साथ दो काम हुए, वो होते हैं और वो क्या होते हैं, एक उन्हें लिबासल जो सबसे पहले भूख का एक होल, जैसे कोई बंदा खड़ा है उसके ऊपर एक ये समझ लें कि एक ट्रांसपेरेंट या इनविजिबल होल उसकी चारों तरफ इंसान के वो अल्लाह डाल देता है, इसीलिए अल्लाह ने कहा ना वैजा जालना बैना का युमिनून ला युमिनून बिल आखिरत हिजाबम मस्तूरा, कि ये जो आखरत पर ईमान ले आते, जालना बैना का व बैन अल्लज़ीना, आपके और इनके दरमियान एक हिजाब मस्तूरा, एक इनविजिबल वेल, एक पर्दा सा हायल हो जाता है इनके दरमियान, अब इन्हें नज़र नहीं आ रहा ये पर्दा है, बट वो दूसरी तरफ देख ही नहीं सकते, और इसी तरह यहाँ पे भी इनको एक खोल चढ़ा दिया गया। अब ये बंदा जो नाशुक्री करता है, जब जब वो दुनिया के किसी कोने में भी बैठा हुआ है, तो उससे साथ होगा क्या, वो एक पहला खोल उसके ऊपर चढ़ जाएगा, भूख का लिबास जो, अब उसे पैसों की अब हर वक्त परेशानी रहेगी, जितना होगा वो कम होगा वो। और यही देखने में आया है, कोई 20,000 रुपये कमाता हो महीने का कोई आजकल का कोई एम्प्लॉई, या 20 लाख रुपये कमाता हो, उसके लिए फिर भी उसके एक्सपेंसेस कम ही पड़ते हैं एट द एंड ऑफ द डे। रिसेंटली एक किसी से बात चल रही थी, उसने मुझे बताया, ही वॉज़ अ बैंकर, ही सेड के भाई मेरी तनख्वाह समझेंगे तकरीबन ऑलमोस्ट 1 मिलियन के करीब मुझे ऑफ़र हुई है, बट आई थिंक ये कम है थोड़ी। गाड़ी भी साथ में एक लेटेस्ट मॉडल की ऑडी मिलेगी और घर एट्सेट्रा, जो भी प्रिविलेजेस तो अलग अपनी जगह, बट ये मुझे लगता है यार ये कम है, तुम्हारा क्या ख्याल है? आई थॉट के उससे बात जो समझ में आती है वो ये है, और कोई आम गरीब आदमी होगा जो बेचारा सिर्फ 5, 7, 10, 15, 20 हज़ार रुपये भी कमा लेता होगा, वो भी परेशान होगा, उसके घर के उसके खाने पीने के वांदे पड़े होंगे, उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे होंगे। तो ये अल्लाह लिबास जो उस बंदे को पहना दे दे पहना देंगे कि वो बंदा फिर सिर्फ भूख के इस पैसों की शॉर्टेज की परेशानी में रहेगा ही, वो मिलियनेयर होगा, वो बिलियनेयर भी होगा, तो उसको हर वक्त परेशानी लगी रहेगी कि यार माल ख़त्म ना हो जाए, इसके पीछे लगा रहा हूँ। और दूसरा काम उसके साथ क्या होगा जब वो नाशुक्री करता है, जैसे इस आयत में चल रहा है, जो लिबासल जो भूख का लिबास और खौवल खौफ, और एक खौफ का लिबास इसके खोल इसके ऊपर अल्लाह पहना देगा, वही इनविजिबल खौफ का खोल इसके ऊपर चढ़ा होगा। बेमा कानू यसनाउन, ये इसे पता भी नहीं होगा कि इसके ऊपर चढ़ गया है, ये अल्लाह की तरफ से एक हिडन, एक वेल, एक इनविजिबल, एक ट्रांसपेरेंट सा खोल इसके ऊपर चढ़ गया। अब खौफ का लिबास कैसे, अब वो दुनिया के किसी कोने में भी होगा, वो किसी वेस्टर्न अमेरिका या यूरोपियन कंट्री में होगा, तो उसे दिन रात खौफ, कोई टेररिस्ट का अटैक, कोई फलां, कोई IRS, कोई FBI, कोई इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, कोई इस तरह का उस कुछ किसी ना किसी फॉर्म में, या कोई टेररिस्ट अटैक, कोई ये ना एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आजकल के ज़माने में अगर हम देख लें तो वो पड़ा होगा उसको खौफ कि मैं क्या होना है, या किसी और दुनिया के कोने में आ जाएगा, इवन मिडिल ईस्ट में आ जाएगा, तो उसे कभी छुड़तेगा, कभी गवर्नमेंट का, कभी इसका, कभी उसका खौफ लगा रहेगा, या कभी सिक्योरिटी टेररिस्ट अटैक का उसको खौफ लगा रहेगा, या कभी डिकॉयट का, किसी चोरी डाकू किसी भी बंदे का, किसी बदमाश से टकराने का, कोई ना कोई फॉर्म में उसकी लाइफ, यानी कि वो स्ट्रीट क्राइम से डर रहा होगा, तो कभी चोरी से, कभी कोई डकॉइट से, कभी रॉबर से, कभी इस तरह के एट्सेट्रा, कोई कार जैकिंग होते हैं केसेस, या हर जगह दुनिया में कोई ना कोई जिस फॉर्म में भी होगा वो उससे अपने इलाके अपनी कौम अपने उसके हिसाब से, बट उसके सराउंडिंग में एक खौफ, एक वॉर का खौफ होगा, और उससे छोटा से छोटा कोई रॉबर का खौफ होगा, इसके दरमियान जो भी हो, तो वो चढ़ जाएगा। अब उस बंदे के पास वकफ़र, इसने किया क्या था, फकफ़रत बयानुमिल्लाही, इसने अल्लाह की नाफरमानी की थी, नहीं की थी, इसने अल्लाह की नाशुक्री की थी, फकफ़रत भी अनुमिल्ला, अल्लाह की इनामात का, अल्लाह की नेमतों की जब इसने नाशुक्री की, तो उसके ऊपर ये खोल चढ़ गया। अब वो खोल इनविजिबल उसके ऊपर चढ़ा रहेगा, और उसे पता भी नहीं होगा कि मेरे साथ ये हो रहा है, और वो दिन हर वक्त परेशान, कभी माल दौलत के लिए परेशान, जितनी है वो कम है, औलाद के लिए परेशान, कभी भूख की टेंशन, कभी खाने की, आज क्या डाइन करना है, कहाँ नहीं करना है, इसके लिए परेशान, और फिर फाइनली डरा रहेगा, उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी थ्रेट लेवल इतना हाई होगा दिन रात, जो मीडिया के थ्रू और इसके थ्रू ही सही, उसके ऊपर एक ऐसा खौफ तारी होगा कि वो बंदा बिल्कुल इमोशनली उससे बाहर फ्री अपने आप को ही नहीं समझ पाएगा। तो इस ये सब का सब ज़हर अलफसाद फिल बर्री वल बहरी बिमा का सबत अई दिन नास लियुज़ी कहुम बाज़ल लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजऊन, ये सब का सब सिर्फ अल्लाह ने क्या फरमाया, तो ज़हर अलफसाद फिल बर्री वल बहर, ये पूरी जो समुद्रों में और ओशंस से लेकर ज़मीन पर लैंड एरियाज में हर जगह फसाद होगा, बीमा का सबत ऐ दिन नास, ये लोगों के अपने हाथों की कमाई होगी, छोटा से छोटा कोई फसाद किसी की ज़िंदगी में कोई डिस्टर्बेंस होगी तो वो उसके अपने हाथों की कमाई होगी, उसके अपने गुनाहों की सज़ा होगी, और لِيُزِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ اس لیے ہوگا لِيُزِيقَهُمْ، دوبارہ یہ چکھنے ایزا کا لفظ آیا، لِيُزِيقَهُمْ میں اس کو چکھاؤں گا، عَمِلُوا بِمَا عَمِلُوا ان عمل اعمال کا نتیجہ جو اس نے گناہ، جن ناشکری میں، جس گناہوں میں یہ پڑتا ہے، اور اس کے اگینسٹ اسے یہ میں مزہ چکھاؤں گا، تاکہ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید اللہ نے پھر ہوپ، ایک دوبارہ ایک وہ اپنی وش یہاں پہ بیان فرمائی، لعلہم یرجعون، کہ شاید یہ لوگ واپس لوٹ آئیں میری طرف. تو اصل کامیابی جو ہوگی وہ دراصل اللہ کی طرف لوٹنے میں، اس کی شکر ادا کرنے میں، اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے میں ایٹ لیسٹ ہوگی، نہ کہ اس کی ناشکری کرنے میں، یا اس کی نعمتوں پہ اگنور کرنے میں، یا انہیں ڈینائی کرنے میں. تو بہرحال اس سے سمجھ یہی آتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ آخرت کی زندگی پہ اگر زیادہ فوکس کرے گا اور ایمفسس رکھے گا، اور اس کی تیاری کرنے کی، جس کو کہتے ہیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ انسان آٹومیٹکلی پھر دنیاوی چیزوں سے باہر آتا جائے گا. اور جیسے کہ فرمایا تھا، من کانت الآخرت ہم، جو آخرت کو اپنا غم بنائے گا، اس کے لیے آٹومیٹکلی یہ سب کے سب مسائل حل ہونا دنیا میں شروع ہو جائیں گے. اللہ خود بخود دنیا اس کے پاؤں میں لا کے رکھ دے گا، اور اس کے دل کو غنا سے اور بالکل فراوانی سے بھر دے گا. اور جو دنیا کو غم بنائے گا، اس کی آٹومیٹکلی لائف بربادی کی طرف ہی جائے گی، دنیاوی لائف بھی جائے گی، اور آخرت تو وہ خود بخود اپنی خراب کرنے پہ ہی جائے گا. تو اللہ ہم سب کو اس آخرت کو اپنا غم بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیاوی زندگی سے کم اپنی ایسوسیشن اور اپنا کنسرن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.